नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम इटली रवाना होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा में 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द किए गए। सरकार ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। कुवैत की एक इमारत में भीषण आग लगने से 40 भारतीय नागरिकों सहित 49 विदेशी श्रमिकों की मृत्यु। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भारतीय नागरिकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए कुवैत पहुंचे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में आकर्षी कश्यप महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में और बी सुमित रेड्डी तथा एन सिक्की रेड्डी की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी भी अंतिम आठ में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भारत को शिखर सम्मेलन में संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा होगी। श्री क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में भारत और अल्प विकसित देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक समारोह में श्री खांडू के साथ 11 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवा नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य मंत्रिमंडल में चाउना मेन, ब्योराम बागे, न्यातो दुकोम, गेब्रियल डी वांगशु, वांकी लोवांग, पीडी सोना, मामा नातुंग, श्रीमती दासांगलू पुल, बालो राजा, केंटो जीनी और ओजिंग तासिंग मंत्री शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद तापिर गांव इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला न देने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगी क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आज मनगाफ पहुंच चुके हैं, जहां वे आग दुर्घटना में घायलों को दी जा रही सहायता का निरीक्षण करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दुर्घटना में मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों से तालमेल बनाए रखना है। कुवैत पहुंचने के बाद श्री कीर्ति वर्धन सिंह कल की आग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए तुरंत जाबिर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भर्ती 6 घायलों से मुलाकात की और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को सूचित किया कि सभी घायल सुरक्षित हैं। भारत ने पपुआ न्यू गिनी के इंगा प्रांत में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न तबाही से निपटने के लिए लगभग 19 टन सहायता सामग्री लेकर एक विमान रवाना कर दिया है। पिछले महीने भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर सहायता पैकेज की घोषणा की थी। उसने सहायता के अपने मंच प्रशांत सागर द्वीप सहयोग संस्थान FIPIC के प्रति अपनी वचनबद्धता के निर्वहन के तौर पर सहायता की वर्तमान खेप भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सहायता की इस खेप में 13 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। कुवैत में हुई आग दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कुवैत के दक्षिणी मनगाफ क्षेत्र में स्थित भवन में आग लगी थी, जिसमें 49 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए थे। कुवैत आग दुर्घटना को देखते हुए केरल मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में राज्य के प्रत्येक पीड़ित को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। केरल के कुछ प्रवासी व्यवसायियों ने भी अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और बजट के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा साजो सामान निर्यात कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत विकसित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ IOA कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्य मंत्री रक्षा खड़से और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी है और खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी सुविधाएं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज भोपाल से PM श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हवाई सेवा के लिए बुकिंग काउंटर की शुरुआत की और यात्रियों को बोर्डिंग पास उपलब्ध कराए। उड़ीसा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की उपस्थिति के दौरान आज सुबह पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर के 3 द्वार को जो कोविड महामारी के समय से बंद थे, वे आज मंगल आरती के बाद खोल दिए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के विभिन्न स्थानों और मंगन के आसपास के इलाकों में कल से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके कारण कई लोगों की मौत हो गई है और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उत्तरी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित विभागों के साथ बातचीत कर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। श्री तमांग ने बताया कि पीड़ितों और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार में अगले 2 दिन, झारखंड में अगले 3 दिन और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने मीडिया से कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के अन्य इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम के कुछ और क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। विभाग ने अगले 4-5 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की काई क्यू तेओ को 21-16, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने काई चेन तायो और ऑस्ट्रेलियन काई चेन तेओ को सीधे से सेटो में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।